بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھو آج مجلس نمبر 36 ہے، اس پر ہے معمولات کی پابندی. گزشتہ بات ہو رہی تھی ذکر کی فضیلت کے بارے میں، ذکر کی اہمیت، ذکر کے مختلف طریقے، اس پر تفصیل سے بات آ گئی. اس کے بعد فرمایا، حضرت والا نے ارشاد فرمایا، اگر معمول سے زیادہ ذکر کو طبیعت چاہے، اگر معمول سے زیادہ ذکر کو طبیعت چاہے تو کر لے کر لے، لیکن اس زائد کو لازم نہ سمجھے، اس زائد کو لازم نہ سمجھے، اور جب بعد چند امید دوام ہو جائے تو التزام کر لے. یہ حضرت کا ملفوظ ہے، اس کو تفصیل سنو. یہ وہی بات ہے جو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی حدیث میں ارشاد فرمائی، اور اسی کی بنیاد پر تمام بندگان دین کا معمول یہ رہا ہے کہ انسان کم سے کم معمولات مقرر کرے. کیا بولتے ہیں؟ کم سے کم معمولات مقرر کرے، جی، جس کو پابندی سے نبھا سکتا ہوں، اتنا کرے. چاہے ایک تسبیح مقرر کرے لیکن پابندی سے کرے، نہ یہ کہ ایک دن تو 50 تسبیح پڑھ لے اور دوسرے دن چھٹی کر لی. تھوڑا کرے لیکن پابندی سے کرے، اس میں زیادہ ثواب ہے، زیادہ افضل بھی ہے اور زیادہ مفید بھی ہے. حدیث شریف میں ہے کہ کسی نے حضرت عائشہ اور حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہما سے سوال کیا کہ کون سا عمل حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو زیادہ پسند تھا؟ ان دونوں نے جواب دیا، ما دیم علیہ و ان قل، یعنی آپ کا پسندیدہ عمل وہ ہے جس کی پابندی کی جائے، چاہے وہ تھوڑا ہی کیوں نہ ہو. سمجھے؟ و ان قل، جس کی پابندی کی جائے چاہے وہ تھوڑا ہی کیوں نہ ہو، اس لیے کہ اس سے زیادہ فائدہ ہوتا ہے، اس سے زیادہ فائدہ ہوتا ہے. دیکھیے، ایک نل میں سے ایک ایک قطرہ پانی ٹپک رہا ہے، لیکن مسلسل ٹپک رہا ہے، تو اس کے نیچے چاہے کتنا بھی سخت پتھر ہو، وہ قطرہ ایک نہ ایک دن اس پتھر میں سوراخ کر دے گا. اگر وہ پابندی سے ٹپکتا رہا، اور دوسری طرف اگر آپ نے پورے پریشر سے نل کھولا، پانی پوری قوت کے ساتھ بہتا رہا، تھوڑی دیر کے بعد آپ نے وہ نل بند کر دیا، تو اب وہ پانی تو بہت تیزی سے بہ گیا لیکن اس نے پتھر میں کوئی اثر نہیں کیا. حالانکہ ایک قطرے نے تو پتھر میں سوراخ کر دیا لیکن اس تیز دھارے نے کوئی سوراخ نہیں کیا، اس لیے کہ وہ ایک قطرہ اگرچہ مقدار کے اعتبار سے تھوڑا تھا لیکن پابندی کے ساتھ تھا. اس لیے اس نے یہ اثر کر دیا. بالکل اسی طرح اگر ایک دن تو جوش میں آ کر خوب عبادت کر لی اور خوب ذکر کر لیا لیکن اگلے دن غائب، اس سے کوئی خاص فائدہ نہیں. بہرحال نفلی اعمال میں جس عمل کی پابندی ہو سکے وہ زیادہ کار آمد، زیادہ فائدہ مند، زیادہ افضل ہے، چاہے وہ تھوڑا ہی کیوں نہ ہو. اس لیے فرماتے ہیں، اپنا معمول تھوڑا مقرر کرو لیکن پابندی سے کرو. اسی لیے بزرگوں نے فرمایا کہ جب انسان ذکر و تسبیح کا اپنا کوئی معمول بنائے تو تھوڑا معمول بنائے تاکہ اس کی پابندی کر سکے. مثلاً اگر روزانہ ایک تسبیح پڑھ سکتے ہو تو بس ایک تسبیح کا معمول بنا لو، یا مثلاً اگر روزانہ ایک پارا تلاوت کر سکتے ہو تو اس کا معمول بنا لو، اگر ایک پارا نہیں پڑھ سکتے تو آدھے پارے کا معمول بنا لو، आधा पारा नहीं पढ़ सकते तो पाव पारे का मामूल बना लो, पाव पारा नहीं पढ़ सकते तो एक रुकू रोजाना पढ़ने का मामूल बना लो, लेकिन पढ़ो रोजाना। लेकिन जो मामूल बनाओ फिर उसको पाबंदी से पूरा करो, चाहे वो एक रुकू ही क्यों ना हो। हम समझते हैं एक रुकू तो क्या होगा, नहीं, वो एक रुकू रोजाना का होगा वो ज्यादा बेहतर है कि आपका एक पारा एक हफ्ता हुआ दूसरा हफ्ता छूट गया, तो उससे ज्यादा बेहतर है। थैंक ये गुंडेदार अमल करना कि आज अमल किया कल छोड़ दिया, परसों फिर कर लिया उससे अगले दिन फिर छूट दिया, इससे कोई काबिले जिक्र फायदा हासिल नहीं होता। हजरत अली रदी अल्लाह ने इरशाद फरमाते हैं, कलीलुन तदूमु अलैहि अर्जा मिन कसीरी ममलूलिन, यानी वो थोड़ा अमल जिसको तुम पाबंदी के साथ कर रहे हो अल्लाह ताला के यहाँ उस अमल की ज्यादा उम्मीद बनिस्बत उस ज्यादा अमल के जो गुंडे गंडेदार हो कि आज किया और कल छोड़ दिया, परसों किया तरसों छोड़ दिया। जायद जिक्र को मामूल में दाखिल न करो, लेकिन बाद अवकात ऐसा होता है कि जब इब्तिदा में किसी ने जिक्र करना शुरू किया तो शुरू शुरू में जिक्र के अंदर दिल लगा, जिक्र की वजह से दिल में निशात पैदा हुआ, तो अब दिल चाहा कि और ज्यादा जिक्र करूं, तो हजरत थानी रहमतुल्लाह अलैह फरमा रहे हैं कि अगर मामूल से ज्यादा जिक्र करने को दिल चाह रहा है तो बहुत अच्छी बात है और ज्यादा कर लो, लेकिन उस ज्यादा जिक्र को अपने मामूल में दाखिल न करो, मामूल में दाखिल न करो, मामूल में सिर्फ उस जिक्र को दाखिल रखो जिसकी पाबंदी तुमसे हो सकती है। मसलन आज ज्यादा जिक्र करने को दिल चाह रहा है तो आज ज्यादा कर लो, लेकिन मामूल उसी करो को जो हमेशा से कर, उतना तक करना ही करना है, जिस दिन ज्यादा जी चाह तो कर लिया, जिस दिन छूट गया तो वो ज्यादा छूटने दो, लेकिन उसकी वजह से मामूल ना छूटना चाहिए, ये समझ लो। मिसाल के तौर पर एक आदमी ने एक रुकू की तिलावत पाबंदी से ली है, बराबर, अब उसको किसी दिन जरा अच्छा लगा, लाओ मैं अभी दो रुकू पढ़ लेता, तो पढ़ लिया, अब तीसरे दिन टाइम नहीं मिला उसके पास तो एक रुकू तो पढ़ ही ले, फिर दो चार दिन के बाद उसका फिर जी चाहा कि चलो मैं आज तीन रुकू पढ़ लेता हूं, तो तीन रुकू पढ़ लिया आपने, कोई बात नहीं, लेकिन फिर उसके बाद आप मशगूली आ गई, कोई ऐसी परेशानी आ गई इसमें मशगूल, तो आप एक रुकू पढ़ लो। तो ये कहते हैं कि वो जो जायद है, बाज मरता क्या होता है जायद तो आपके एक दिन दो दिन तो कर लिया, फिर जो छूटा तो मामूल भी छूटा, जायद तो छूटा छूटा मामूल भी छूट गया, ये होता है। तो हजरत इसको समझाना चाहते हैं कि देखो जायद कर लो, जैसे एक तस्बीह दी है मिसाल के तौर पर, एक तस्बीह दी है बस तीसरे कलमे की, मिसाल 100 मरतबा पढ़ना, अब जी चाहा कि मेरे पास तो टाइम है और क्या करूं टाइम कैसे पास करूं, तो ठीक है आपने दो तस्बीह और पढ़ ली कर लो, अभी दूसरे दिन मशगूली आ गई आपने एक पढ़ लो, फिर आपने कभी आप मशगूली पूरा हफ्ता फुर्सत मिली आपने तीन तीन पढ़ लिया, कोई बात नहीं, लेकिन फिर नेक्स्ट हफ्ते में जाओ तो एक तो बाकी रखो, बाद मरता ज्यादा तो कर लिया फिर तो वो असल भी मामूल छूट गया ज्यादा भी छूट गया, तो ये याद रखे कि जो असल मामूल है वो छूटने न पड़े। तो मामूल से ज्यादा करने को दिल चाह रहा है तो बहुत अच्छी बात है ज्यादा कर लो, लेकिन उस ज्यादा जिक्र को अपने मामूल में दाखिल न करो, मामूल में सिर्फ उस जिक्र को दाखिल करो जिसकी पाबंदी तुमसे हो सकती है। मसलन आज ज्यादा जिक्र करने को दिल चाह रहा है तो आज ज्यादा कर लो, लेकिन मामूल उसी करो को जो हमेशा से करते चले आ रहे हो। अलबत्ता अगर इस जायद जिक्र की पाबंदी होने लगे, जायद जिक्र अगर आपने बढ़ा दिया, मिसाल के ऊपर तीन तस्बीह या कुरान का पारा एक से आपने दो रुकू कर लिए, तो अब अगर फरमा रहे हैं कि अलबत्ता अगर जायद जिक्र की पाबंदी होने लगे, जैसे आपने दो रुकू बराबर 2 महीने 3 महीने तक चल पड़ा है मिसाल के तौर पर, तो जायद की पाबंदी होने लगे तो फिर बाद में उसको भी मामूल में दाखिल कर लेना, फिर आप समझना कि अब मेरा मामूल अब दो रुकू हो गया, फिर समझना, लेकिन पहले पाबंदी से करने के बाद फिर मामूल बना लो, वो हफ्ता दो हफ्ता करने के बाद मामूल नहीं बना, आपने देख लिया भाई 2-3 महीने से बराबर मैंने दो रुकू पढ़ लिया, अब मामूल कर लो कि दो ही पढ़ना, अब फुर्सत मिले तो तीन पढ़ लो थोड़ा थोड़ा करके, फिर आपका तीन रुकू पढ़ने का मामूल यानी 2-3 महीने तक बराबर पढ़ लिया, बोला मेरे पास हो सकता है तो फिर उसको मामूल में दाखिल कर लो, तीन रुकू को। तो इस तरीके से ये कहना चाहते हैं। बुजुर्गों का तरीका ये रहा है कि जब कोई शख्स किसी शेख से रुजू करता है, बुजुर्गों का तरीका ये रहा, जब कोई शख्स किसी शेख से रुजू करता है और शेख उसको कुछ जिक्र बता देता है कि ये जिक्र रोजाना कर लिया करो, जब वो जिक्र करता है और जिक्र में निशात महसूस होता है तो शेख से कहता है कि मुझे मजीद जिक्र बताइए, कहता है उसको मजा आता है तो, और जिक्र करने को दिल चाह रहा है, तो ऐसे मौका पर हमारे बुजुर्ग उसको नया जिक्र बताने के बजाय उससे कहते हैं कि तुम पुराना जिक्र दोबारा दोहरा लो। सुभान अल्लाह, क्या फरमाते हैं, मसलन ला इलाहा इल्लल्लाह 100 मरतबा पढ़ने को कहा, पढ़ते हो ना, तो अब क्या बताते, अब इसको जी चाह रहा है कि मैं जरा और कुछ जिक्र करूं, तो हमारे मशाई क्या फरमाते हैं, फरमाया वही ला इलाहा इल्लल्लाह 100 मरतबा, फरमाया आप 200 मरतबा पढ़ लो, उसको 200 मरतबा पढ़ो, ताकि ऐसा ना हो कि जोश में आकर जिक्र ज्यादा तो करा लिया लेकिन चंद दिनों के बाद सुस्त पड़ गया और उसको फिर छोड़ दिया। हाँ, इसीलिए बहुत सारे लोग हम जिसको मुराकबा देते हैं तो कहते हैं हमारे पास बहुत सारा फुर्सत है तो हम ये कर ले वो कर ले, हम उनसे कहते हैं कि भाई मुराकबा को ज्यादा कर लो, जब वक्त गुजारना है, क्यों कि मुराकबा ज्यादा कर लोगे तो जिस दिन ज्यादा कर लोगे तो कम तो आप कम से कम तो हो ही रहा है, चाहे 10 मिनट 15 मिनट भी हो, लेकिन कभी 1 घंटा कर लो, कभी ज्यादा वक्त 2 घंटा कर लो, तो बजाय दूसरा मामूल करने के आप इसको 2 घंटा करोगे तो ज्यादा नफा होगा। लेकिन क्या अंदर का नफ्स जो है ना बड़ा चोर होता है, वो जरा इससे घबरा कर कहता है कि जरा कुछ और नई चीज मिल जाए, तो मशाइख ने भी क्या बताया, फरमाया उसी को 200 मरतबा पढ़ लो। बाद लोग ऐसे होते हैं जो ये चाहते हैं कि सब कुछ एक ही रात में कर ले, यानी वो चाहते हैं एक ही रात में अल्लाह का ताल्लुक मिल जाए और जिब्रेल से मुलाकात हो जाए एक ही रात में। रमजान मुबारक की रातों में तो खास तौर पर जोश आता है कि आज रात जो कुछ इबादत करनी है कर लो, चुनांचे सारा जोश उसी एक रात में ठंडा कर लिया और अगले दिन पढ़ के सो गए। एक दिन में होता है ना, बेचारे वो पूरा जोश खत्म कर देते, फिर फर्ज नमाजों का भी एहतमाम नहीं रहा, चे जाए कि तहज्जुद और दूसरे नवाफिल का एहतमाम होता। हाँ, तो वो जोश नहीं दे, इसलिए होश से काम लेना पड़ता है, तो आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ना होता है, वरना इंसान का नफ्स है ना मांगता है कि जरा कुछ और दो, बोले इससे क्या होता है, नहीं, पाबंदी से जितना है करते रहो। बहुत से लोग एक पारा कहते हैं हम पढ़, हमने कहते हैं भाई नहीं आपको एक पारा नहीं पढ़ना, आपको पाव पारा पढ़ना है, लेकिन हमेशा पढ़ना है। तो ये है कि वहां से अब पाव पारे से लेकर उसको एक पारे तक जाना है, लेकिन पहले कारगुजारी सुनाए कि हाँ पर हमसे हो रहा है, महीना 2 महीना किया तो अब कहेंगे भाई 2 रुकू और बढ़ा दो, तो इस तरीके से उसको लिया जाए ताकि एक पारे की पाबंदी पर आ जाए। हजरत गंगोई रहमतुल्लाह अलैह का एक मलफूज, तो समझ में आ गई बात, ये हमारे अंदर बहुत ही नफ्स होता है, कहीं किताबों में पढ़ा किसी की फजीलत और उसको शुरू कर देते, तो इधर उधर की सारी चीजों को लेकर शुरू न कर दे, बाद मर्तबा शुरू करने से हमारा असल मामूल भी खत्म हो जाता है। हजरत गंगोई रहमतुल्लाह अलैह का एक मलफूज मैंने अपने वालिद माजिद रहमतुल्लाह अलैह से सुना, वो फरमाया करते थे कि जब तुम इबादत कर रहे हो, चाहे वो इबादत नमाज हो, चाहे वो जिक्र हो, चाहे वो तिलावती कुरान हो, इस इबादत को जी भरने से जरा पहले छोड़ दो। फरमाए उस इबादत को जरा जी भरने से पहले छोड़ दो, यानी जरा बहुत ज्यादा शौक हो रहा है ना तो शौक पूरा मत करो, थोड़ा शौक बाकी और छोड़ दो, और इबादत के शौक को बिल्कुल इंतहा तक मत पहुंचा दो कि बिल्कुल थक के चूर हो गए अब दूसरे दिन कुछ भी नहीं, बिल्कुल इंतहा तक न पहुंचाओ, बल्कि उस वक्त इबादत छोड़ दो जब अभी मजीद इबादत करने की ख्वाहिश दिल में मौजूद हो। जैसे खाने के अंदर भी बुजुर्गों ने बताया कि खाना उस वक्त छोड़ दो जब अभी थोड़ी सी ख्वाहिश खाने की मौजूद हो, पेट भरकर इतना मत खाओ कि सांस लेने की गुंजाइश भी न रहे। और बहुत से लोग इतना खाते कि उठने की भी गुंजाइश नहीं रहती कि बैठे हैं तो बोला अभी उठा नहीं जाता, क्या वो इतना खा लिया जी। इसी तरह नफली इबादत उस वक्त छोड़ दो जब मजीद इबादत करने की ख्वाहिश अभी बाकी हो, बिल्कुल इंतहा तक न पहुंचाओ। हजरत मौलाना याकूब साहब नानोत्री रहमतुल्लाह अलैह की मिसाल चकडोर से दिया करते थे जिससे बच्चे खेला करते हैं। आजकल तो इसका रिवाज नहीं रहा, हमारे देवबंद में उसको चकडोर कहा करते थे और यहां पर शायद उसको चक्की चक्की कहा जाता है। हाँ, एक गोल सा पहिया होता है जिस पर धागा लपटा जाता था, फिर उसको दूर फेंकते थे, फिर वापस खींचते थे, उसको चकडोल कहते थे। गोल पहिया होता था, उस पर धागा लपेटा जाता था, फिर उसको दूर पर फेंक कर फिर उसको खींचते थे। हजरत गंगोई रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि चक्की का कायदा यह है कि उसके ऊपर धागा लपटा हुआ होता है, जब उस चक्की को फेंकते हैं तो उसका धागा खुल जाता है। अगर तुमने चक्की को फेंकते वक्त तो पूरा धागा के खोल दिया तो अब चक्की वापस नहीं आएगी और खुद ब खुद उस धागे धागा के दोबारा नहीं लपटेगा। चक्की उस वक्त वापस आती है जब उसमें थोड़ा सा धागा लपटा हुआ बाकी रह जाए, उस वक्त उसको खींचने से वो चक्की वापस भी आ जाती है और धागा भी दोबारा उस पर लपेट जाता है। समझ में आया ना, एक कोई ऐसी चीज होती है ना जिस पर हम धागा लपेट उसको खींचो तो जब खींचेंगे तो धागा तो खुला तो सही, लेकिन अगर उसको छोड़ दोगे वापस उसके साथ लपेट जाता है। अब जैसे वो मेजर टेप होती है ना, मेजर टेप देखो, अब उसको खोलो खोलो खोलो, उसको पूरा खोला लेकिन अंदर एक थोड़ा लपटा हुआ है, तो अब उसको छोड़ दो तो दोबारा लपेट जाती। मेजर टेप समझ लोगे, तो दोबारा अंदर लपेट जाती, लेकिन अगर वो अंदर थोड़ा भी ना रहा पूरा खुल गया तो दोबारा नहीं लपटी जाएगी। तो फरमाया थोड़ा सा अंदर रहने दो तो दोबारा लपेट ली जाएगी। तो यही कहना चाहते हैं कि शौक जो है वो थोड़ा सा बाकी रखो तो दोबारा वापस तुम का अमल कर सकोगे, और शौक को अगर पूरा ही कर दिया है तो ऐसा हुआ जैसे धागे को पूरा खोल दिया, पट्टी को पूरा निकाल दिया, तो अब दोबारा लपेट कर नहीं जा सकती। अब समझे बात, तो वो मिसाल जल्दी समझ में आएगी मेजर टेप की। तो ये मिसाल बयान करने के बाद हजरत गंगोई रहमतुल्लाह अलैह फरमाते थे कि इस तरह अगर तुमने इबादत के दौरान सारा धागा खोल दिया यानी सारी मेजर टेप पट्टी खोल दी और इतनी इबादत कर ली कि अब जोश ठंडा पड़ गया और मजीद इबादत करने की ख्वाहिश बाकी न रही, पूरी खोल दी, तो अब तुम दोबारा इबादत की तरफ वापस नहीं लौटोगे। और अगर तुमने इबादत को उसी वक्त छोड़ दिया जबकि अभी इबादत करने की थोड़ी सी ख्वाहिश बाकी है तो तुम फिर इबादत की तरफ वापस आ जाओगे जी। अल्लाह, तो पूरा ख्वाहिश पूरी नहीं कर लेने की। खाने में भी यही है और बात के अंदर भी यही होते हैं, जो इंसान अगर किसी को दावत दे रहा है तो दावत में भी इतनी पूरी मत दे दो कि जिसकी वजह दोबारा तुमसे कभी मुलाकात भी नहीं करे, बल्कि उसका शौक बाकी रखकर उसको छोड़ दो ताकि दोबारा फिर से मिलेगा। बोले वो बात बहुत अच्छी तरह, आगे क्या और सुनाओ। तो वो बात दावत देने के अंदर भी ये चीज है, खाने में भी यही चीज है, और इस तरीके से इबादत में भी जिक्र में भी। तो मेरे वालिद माजिद रहमतुल्लाह अलैह हजरत गंगोई रहमतुल्लाह अलैह की बयान करदा इस मिसाल को बयान फरमाने के बाद फरमाते थे कि अच्छी बात है कि कोई इंसान दुनिया के काम में लगा हुआ हो लेकिन उसका दिल इबादत में अटका हुआ, दुनिया के काम में लगा हुआ हो लेकिन उसका दिल इबादत में अटका हुआ हो कि मुझे इस काम से जल्द फुर्सत मिले तो मैं जाकर इबादत करूं, ये सूरत ज्यादा बेहतर है बनिस्बत उसके कि तुम इबादत तो कर रहे हो लेकिन दिल दुनिया की तरफ लगा हुआ है, कि जल्दी से इबादत से फरागत हो तो जाकर अपने काम धंधे में लगो। हाँ, देखा, एक वो है जो दुनिया में लगा हुआ है लेकिन इबादत का इंतजार कर रहा है, और एक वो है जो इबादत में लगा हुआ है लेकिन दुनिया का इंतजार कर रहा है। तो फरमाया वो बेहतर है उससे कि जो इबादत में लगा हुआ और फरागत का इंतजार कर रहा है। तो हमारे हजरत डॉक्टर अब्दुल हई साहब रहमतुल्लाह अलैह बकसरत शेर पढ़ा करते थे, और जब मेरी हरमैन शरीफेन में हाजिरी होती है और वहां से वापसी के मौका पर आखिरी मरतबा दुआ वगैरह से फारिग होने के बाद वापसी होती है, तो उस वक्त बकसरत शेर याद आ जाता है हजरत डॉक्टर अब्दुल हई साहब का। कह चुका जी भर के जो कुछ उनसे कहना था मुझे, कह चुका जी भर के जो कुछ उनसे कहना था मुझे, फिर भी अब तक हसरते शरहे तमन्ना दिल में है। फिर भी अब तक हसरते शरहे तमन्ना दिल में है, यानी जो उनसे कहना था वो तो कह दिया, लेकिन मजीद कहने की हसरत भी दिल में बाकी है। तमन्ना दिल में बाकी है। चुनांचे हजरत गंगोई रहमतुल्लाह यही तो फरमाते थे कि थोड़ी सी हसरत अपने दिल में बाकी रखो, एक ही मर्तबा में सारी हसरत खत्म न कर दो, ताकि यह हसरत दोबारा तुम्हें इबादत की तरफ खींच कर ले आए। जी, शेख की जरूरत, लेकिन इस मकसद के लिए शेख की जरूरत होती है, लेकिन इस मकसद के लिए शेख की जरूरत होती है। वो इस बात का फैसला करता है कि इसके लिए क्या चीज मुफीद है और कितनी मुफीद है। देखो, उसको किस मौका पर इबादत से रोक देना चाहिए और किस मौका पर इबादत करने की इजाजत देनी चाहिए, ये कौन करेगा? इस शेख की जरूरत होगी और वही फैसला करेगा। इबादत कौन से मौका पर रोकना है, ऐसा नहीं है कि इबादत अगर रोका जाए तो कहा जाए कि इबादत से रोकते, नहीं। इलाज के लिए शेख की कर सकता है किस मौका पर इबादत से रोक देना चाहिए और किस मौका पर इबादत करने की इजाजत देनी चाहिए, क्योंकि नवाफिल इबादत तो बहुत सारी है और बहुत तरह की है। कौन किसको कौन सी इबादत से बीमारी पैदा हुई है तो उसको उस इबादत से रोका जाता है, दूसरी इबादत दी जाती है उसके मुकाबले में। नवाफिल तो कुर्ब का जरिया है, कोई भी नवाफिल अमल करो, तो एक से बीमारी होती है तो दूसरा करो। लेकिन अब खुद फैसला नहीं कर सकता, अगर इंसान खुद अपनी मर्जी से करता रहे तो बाज औकात वो भटक जाता है। मामूलात में भी यही होता है कि मामूलात किसी के कहने से करेंगे तो उसमें इत्मीनान ज्यादा होता है। अब अगर हम अपनी मर्जी से अगर एक रुकू पढ़ते हैं तो नफ्स सताएगा, अरे पूरा कुरान पढ़ना चाहिए, सारे मशाइख यही कहते हैं और यही मामूल है और ये होता है। अब पूरा पारा पढ़ने जाते हैं तो पाबंदी नहीं होती, और एक पढ़ने जाते हैं एक रुकू पढ़ने जाते हैं तो नफ्स सताता है, तो अब देखो कंफ्यूज रहता है, वसाविस में रहता है। लेकिन अगर किसी के कहने के मुताबिक उसने अमल कर लिया, किसी को अपना रहबर बना लिया, उसने कहा कि भाई तुम्हें एक रुकू पढ़ना है, अब आपको वो नफ्स नहीं सताएगा, अब इत्मीनान होगा। और खुद करेंगे तो करने के बावजूद भी परेशान हाल है कि मैं सही कर रहा हूं या गलत कर रहा हूं, सही कर रहा हूं या गलत कर रहा हूं, तो कभी एक पढ़ेगा कभी छोड़ेगा कभी एक रुकू, तो उसी में चलते रहते, फिर आगे जाके वसाविस की बीमारी में मुबतला हो जाते हैं। ये मिसाल दे रहा हूं, ऐसे हर अमल में कई लोगों को देखा कि वो एकदम से इबादत के जोश में आ गए, अब रात भर खड़े होकर नवाफिल पढ़ रहे हैं और दिन भर में कुरान शरीफ खत्म कर लिया, दिन भर में एक कुरान शरीफ खत्म कर लिया और बहुत सारी तस्बीहात पढ़ ली। एक हफ्ते तक ये जोश बरकरार रहा, ओहो, यहां तक कि लोगों की उंगलियां उसकी तरफ उठने लगी कि फुला साहब, ओहो, वो तो अब नमाजी इबादत गुजार तहज्जुद गुजार बन गए, लोगों की उंगलियां उठने लगी इतनी इबादत कर ली। और एक हफ्ते के बाद अब मस्जिद में भी नजर नहीं आ रहे हैं। तो देखा, वो जोश था, होश से काम करो, नजर नहीं आ रहे, जमात में भी हाजिर नहीं होते, अब सब जोश ठंडा हो गया। इसलिए शेख की जरूरत होती है, वो उसको एतदाल में रखता है। इसीलिए हजरत थानी रहमतुल्लाह अलैह ने क्या अजीब जुमला इरशाद फरमाया कि अपने अंदर तब्दीली इस तरह लाओ कि तुम्हारी तरफ उंगलियां न उठे, अपने अंदर तब्दीली इस तरह लाओ कि तुम्हारी तरफ उंगलियां न उठे, यानी जो इंसान आहिस्ता आहिस्ता करेगा तो कुछ भी नहीं होगा, लेकिन जोश में आएगा और 1 महीना तक 2 महीना तक 3 महीना तक अगर जोश रहा तो उंगलियां तो उठेगी। अरे वाह, वो इंसान तो फिर बाद में क्या हो, वैसे के वैसे वापस पलट गया पिछली जिंदगी की तरफ। तो ये है कि फरमाया तुम्हारी तरफ उंगलियां न उठे, अगर अपने अंदर तब्दीली लाने में उंगलियां उठ गई तो ये फितना है। उसमें अंदेशा इस बात का होता है कि अपनी साबिका हालत पर वापस लौट जाएगा। अंदेशा इस बात का है कि पिछली हालत में वापस लौट जाएगा। कई वजूहत होती है, या तो कभी नजर लगने की वजह से, कभी जोश खत्म हो जाता है, कभी क्या होता है। तब्दील इस तरह लाओ जैसे देखते देखते बच्चा बालिग हो जाता है। अगर बच्चे को रोजाना फीट से नापो, टेप से नापो, आज कितना बड़ा हुआ, कल कितना बड़ा हुआ और कितना फर्क वाकई हुआ, तो मेजर टेप के जरिए कोई फर्क नहीं मालूम होगा, लेकिन ऐसा ऐसा वो जवान हो जाएगा, है कि नहीं। तो ऐसे ही अपने आप को भी जब आगे बढ़ाना है तो ऐसे ही करो, आहिस्ता आहिस्ता, चाहे उसमें 8-10 साल लग जाए, लेकिन हम तो चाहते क्या है, आज मुराकबा हो और कल अल्लाह से मुलाकात हो जाए, और नहीं हुई तो फिर छोड़ देंगे हम। हाँ, जैसा मुराकबा लोग चाहते हैं जी। तो ये ऐसा करो कि उंगली हमारी तरफ न उठे, अल्हम्दुलिल्लाह। तो उसमें करते जाओ, किस दिन कितना बड़ा वो मालूम नहीं होता है बच्चा, लेकिन रोजाना बढ़ रहा है, यहां तक कि जवान हो गया। लिहाजा तब्दीली इस तरह लाओ कि उंगलियां न उठे, इसलिए कि उंगलियां उठने से शख्स के तकब्बुर और उजम में मुब्तला होने का भी अंदेशा रहता है। इसके लिए सबर करना पड़ता है, शेख को भी सबर करना पड़ता है और मुरीद को भी सबर करना पड़ता है, इसलिए कि मुरीद भागना चाहता है और शेख उसको पकड़ना चाहता है। वो कहता है मुझे जल्दी से दो, और वो कहते हैं कि भाई नहीं, अभी आहिस्ता आहिस्ता जाने दो। तो उसी में कभी कभी तो वो मुरीद भी दूसरा शेख पकड़ता है, बोले जो मुझे जल्दी से आगे ले जावे उसके पास जाऊंगा। ऐसे ही बच्चा देखो, बच्चा जब मदरसे में दाखिल होता है तो पहले दिन तो कुछ भी नहीं लगता, बोले क्या सबक मिला, लेकिन साल भर के बाद देखो, कोई एक क्लास से दूसरी क्लास में जाता है, उसके बाद दूसरी क्लास में, और 5 साल के बाद देखोगे तो वो बच्चा कुरान के अंदर चला गया। अब तुम आए हैं और 1 महीना हुआ है, बोले बच्चा अभी तक तो कुरान में नहीं गए, तो वो कैसे जाएगा, और 1 महीने में कुछ दिखाई भी नहीं देगा, लेकिन साल भर होगा तो खुद ब खुद दिखाई। अब बहुत से माँ बाप बेचारे समझदार नहीं होते, बोले 1 महीने से हमारा बच्चा इसमें पढ़ा हुआ, अभी तक आगे नहीं गया। वो कहते 6 महीने हो गए अभी आगे नहीं बढ़ा, अभी सबर करें। वो एकदम से कुरान नहीं, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता जो जाएगा तो वो कुरान को सही पढ़ेगा, और जो एकदम से उसको आगे बढ़ा दिया कि 1 ही साल के अंदर उसको कुरान में पहुंचा दिया, तो फिर वो कुरान में से आगे बढ़ नहीं सकता, इसलिए वापस लौटेगा। क्यों? कि उसको कुछ भी मालूम नहीं। तो ऐसा ही इसी के अंदर होता है कि आहिस्ता आहिस्ता जो इंसान जाता है तो वो वाकईतन उसका ताल्लुक हमेशा बाकी रहता। तो इतना मामूल बनाओ जिसकी पाबंदी कर सको। बहरहाल जब अपना कोई मामूल बनाओ तो ऐसा बनाओ जिसकी तुम पाबंदी कर सको, अगरचे वो थोड़ा हो, जोश में आकर ज्यादा मामूल न बना लो, इसलिए कि रहबर और किसी रहनुमा और किसी मुर्शिद की जरूरत होती है, जो ये बताता है कि इतना मामूल बनाओ, उससे ज्यादा न बनाओ। वो जानता है कि तुम्हारे लिए क्या फायदेमंद है और क्या नुकसानदेह है, इसीलिए कहा जाता है कि किसी अल्लाह वाले से ताल्लुक कायम किए बगैर, उसकी तरफ रुजू किए बगैर, उससे रहनुमाई हासिल किए बगैर आदतन इस्लाह नहीं होती, इस्लाह नहीं होती। इसलिए बार बार इसकी ताकीद की जाती है कि किसी अल्लाह वाले से ताल्लुक कायम करे और फिर उसकी रहनुमाई में इस रास्ते पर चले। अल्लाह ताला हम सबको इसकी तौफीक अता फरमाए जी। तो ये तो मामूलात की पाबंदी पर जो मलफूज था उसके बारे में सारी बात आई। आमीन। कि मामूलात कितना हो। अब आगे बात है मामूलात छूटने पर हसरत और नदामत जी। एक साहब ने हजरत वाला को लिखा कि मेरा एक मर्ज है, मेरा एक मर्ज है जो कि सबसे बढ़कर है। वो क्या है? वो कम हिम्मती है कि मुझसे कोई काम नहीं होता। ये तो मेरा सवाल है, क्या है कि मुझसे कोई काम नहीं होता, एक साहब ने लिखा। तो जवाब में हजरत वाला ने लिखा, जितना भी हो जाए, क्या है, जितना भी हो जाए वो भी बे किए हुए की नदामत से मिलकर महरूम न रहने देगा। यानी जितना आपसे हो सकता है, यानी देखो इन्होंने ये सोचा कि कुछ ज्यादा होना चाहिए, अब मेरे से ज्यादा तो होता नहीं है, थोड़ा सा हो जाता है तो इंसान को अंदर से थोड़ी हसरत होती है ना, कि मेरे से तो हिम्मत भी नहीं है, ज्यादा होता भी नहीं है। तो हजरत जवाब में क्या बेहतरीन फरमाया, कितनी तसल्ली दी, फरमाया जितना भी हो जाए, जितना हुआ तो है ना कुछ तो हुआ, फरमाया वो भी बेकिए हुए की जो नदामत से मिलकर महरूम न रहने देगा, यानी जो नहीं होता है उससे जो नदामत होती है वो थोड़ा करने की वजह से अल्लाह तुमको महरूम नहीं रखेगा। हाँ, और न करने की वजह से जो नदामत होती है ना, तो वो नदामत भी महरूम नहीं होने देगी। न करने की जो मतलब, एक तो नदामत है कि मेरे से ज्यादा हुआ नहीं और थोड़ा सा हुआ है, और ज्यादा न होने की या कभी छूट गया उसकी नदामत हुई, फरमाया नदामत जो है वो महरूम नहीं रहने देगी, उस पर भी अल्लाह अजर देगा। सुभान अल्लाह, क्या बात कही, कितनी तसल्ली थी। देखो कहीं भी ऐसा नहीं है, देखो हम जैसे नए लोगों को कितनी तसल्ली दे रहे हैं, का कोई बात नहीं, न होने पर भी जो नदामत हो रही है ना, तो ये भी एक होना है, ये भी एक होना है कि कुछ तो हुआ। बहुत से ऐसे हैं कि जिनको नदामत ही नहीं है, और तुम्हें नदामत हुई तो फर्क पड़ा ना। इन साहब ने अपना जो मरज लिखा है, अब उसकी जरा तफसील देखो, उन साहब ने अपना जो मरज लिखा वो हकीकतन हम में से तकरीबन अक्सर लोगों में पाया जाता है, ये लिखा ना, मैंने कहा हम में भी पाया जाता है, मेरे अंदर भी। वो ये कि काम करने की हिम्मत नहीं होती और कम हिम्मती का शिकवा रहता है, काम करने की हिम्मत नहीं और कम हिम्मती की शिकवा रहता है। तो हजरत का जवाब समझने से पहले समझ ले कि काम करने की हिम्मत न हो सकना ये दो किस्म का होता है, काम करने की हिम्मत न हो सकना, न होना, ये दो किस्म की होती है। एक ये कि एक शख्स को अपने फराइज वाजिबात अदा करने ही की हिम्मत नहीं है, एक शख्स वो है कि उसको अपने फराइज और वाजिबात अदा करने ही की हिम्मत नहीं है, मसलन नमाज फर्ज है, अब उस फर्ज को अदा करने की हिम्मत नहीं हो रही है, या मसलन रोजा फर्ज है लेकिन रोजा रखने की हिम्मत नहीं हो रही है, उसका इलाज तो उसके सिवा कुछ नहीं कि अपने साथ जबरदस्ती करे और जबरदस्ती करके इस फर्ज को अंजाम दे। ये तो फराइज है, इसमें तो कोई दो राय नहीं, ये तो करना ही करना, अगरचे इस काम को करने का दिल नहीं चाह रहा है लेकिन जबरदस्ती अपने आप को खींच कर ले जाए, जबरदस्ती अपने आप को खींच कर ले जाए। गुनाहों से बचने का इलाज, यही हाल गुनाहों से बचने का भी, ये तो फराइज है ना, फराइज और वाजिबात जो करने के हैं। फराइज और वाजिबात जो करने के हैं यही, और ये गुनाहों से जो बचने का है वो भी तो फराइज में से आता है, यही हाल गुनाहों से बचने का है, जो सरी और खुले गुनाह है उनसे बचने की हिम्मत नहीं हो रही है, तो उसका इलाज उसके अलावा कुछ नहीं कि अल्लाह ताला के अजाब को मुस्तहजर करे और अल्लाह के ताला के सामने पेश होने का तसव्वुर करे और जबरदस्ती अपने आप को उस गुनाह से बचाए और दूर करे। लिहाजा फराइज और वाजिबात की अदायगी और मुहर्रमात से इज्तिनाब और गुनाहों से परहेज करने में हिम्मत नहीं हो रही है, तो इनका इलाज ये है कि जबरदस्ती करे, चाहे जान चली जाए, चाहे कुछ हो जाए, मैं तो ये फर्ज अदा करूंगा और उस गुनाह से बचूंगा, उसके अलावा कोई ऐसा नुस्खा नहीं है जो इंसान को गोल कर पिला दिया जाए और उसके नतीजे में फराइज और वाजिबात खुद ब खुद अदा होने लगे, हिम्मत तो इस्तेमाल करनी पड़ेगी। ये पहली किस्म, साफ बात है, इसी के बारे में तो पहले सब कुछ बातें, बहुत सारे सबक इसके बारे में गए, हिम्मत से काम लेने, हिम्मत पर आई थी सारी बातें। अच्छा, तो फरमाया देखो दो किस्म की हिम्मत जो होते हैं ना, जो काम होते हैं, फरमाया दो किस्म के होते हैं, एक ये शख्स जो फराइज और वाजिबात है, दूसरी किस्म है कि एक आदमी है जो अपनी बिसात की हद तक, अपनी ताकत की हद तक सिर्फ फराइज और वाजिबात अदा करता है, वक्त पर नमाज अदा करता है, रोजे रखता है, गुनाहों से बचता है, बचने की हद तल इम्कान कोशिश करता है। अलबत्ता नवाफिल और असकार की हिम्मत नहीं होती, नवाफिल और असकार की हिम्मत नहीं होती। जो मामूलात मुकर्रर कर रखे हैं उनकी पाबंदी नहीं हो पा रही है। किसी दिन मामूल पूरा कर लिया, किसी दिन छूट गया, या उसका दिल चाहता है कि मैं ज्यादा असकार और ज्यादा नवाफिल अदा करूं, यानी कुछ तो कर रहा था लेकिन जी चाहता है ज्यादा करूं, लेकिन उसके लिए हिम्मत नहीं हो पाती। या रात को आखिरी वक्त में उठकर तहज्जुद पढ़ने को दिल चाहता है लेकिन आंख नहीं खुलती, नहीं उठ पाता, इसलिए ईशा की नमाज और वितर के दरमियान 4 रकात तहज्जुद की नियत से पढ़ने पर इक्तिफा कर लेता है, सोने से पहले ही नमाज पढ़ लेता है तहज्जुद की नियत करके। तो ये सवाल ऐसा ही शख्स कर रहा है कि मेरे अंदर कम हिम्मती है। ये जो शख्स कर रहा है वो ऐसा ही शख्स कर रहा है जिसके अंदर कम हिम्मत, यानी नवाफिल के अंदर, कि मेरे अंदर कम हिम्मती है, कोई काम नहीं होता। मकसद उसका ये कि नवाफिल और अस्कार, जिक्र और अस्कार ज्यादा करने की हिम्मत नहीं होती। ये है, इस बात की तफसील बताए। तो फरमाया, अब तो उस शख्स का जवाब क्या दिया कि जितना भी हो जाए वो भी बे किए हुए की नदामत से मिलकर महरूम न रहने देगा। यानी जितना भी नफली अमल बन पड़ा, जितना भी नफली अमल बन पड़ा उसको कर लिया, मसलन 1000 मरतबा कलमा तैयबा न पढ़ सका, 100 मरतबा पढ़ लिया, या जिन तस्बीहात का मामूल था वो न पढ़ सका, सिर्फ नमाज के बाद तस्बीह फातिमा पढ़ने पर इक्तिफा कर लिया, या मसलन रात को तहज्जुद के लिए नहीं उठा जा रहा है इसलिए ईशा के बाद 4 रकात तहज्जुद की नियत से पढ़ ले, ये शख्स जितना कुछ अमल कर रहा है। जैसे एक मरतबा एक शख्स वो है, वो मुराकबा 1-1 घंटा कर रहा था, अब उससे नहीं हो रहा, अब भाई 15 मिनट भी कर लो तो ये भी, और बाजों का 15 मिनट हो रहा है, घंटा नहीं, उनको हसरत है, तो फरमाए इस पर भी 15 मिनट भी हो रहा है तो ये भी तो काम है, उस और कोशिश करो। तो ये कह रहे हैं कि जितना कुछ अमल कर रहा है उसके साथ साथ उसको उस पर नदामत भी हो रही है कि अफसोस मुझसे कुछ नहीं बन पड़ रहा, मैं तो कुछ कर नहीं पा रहा हूं। तो उस शख्स का ये थोड़ा सा अमल बे किए हुए की नदामत से मिलकर, जो नहीं किया ज्यादा उस पर जो नदामत हो रही है, वो इस थोड़े से अमल, वो नदामत इस थोड़े से किया हुआ अमल के साथ में मिल जाएगी, तो कहते वो नदामत से मिलकर इंशाअल्लाह महरूम नहीं रहने देगा। अब समझ में आ गई बात, तो नदामत से मिलकर महरूम नहीं रहने देगा। अजीब बात, अजीब बात, बस यहीं पर रहने देते हैं, दूसरा कल करें। हाँ, थोड़ी देर मुराकबा कर ले, आंखों को बंद कर ले, गर्दन को झुका ले और ये तस्वुर करे कि अल्लाह की रहमत आ रही, मेरे दिल में समा रही, दिल से जुल्मत यही दूर हो रही, मेरा दिल कह रहा है अल्लाह अल्लाह अल्लाह।